एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को देखने का मेरा नजरिया तो काफी बदल दिया है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान।
हाँ।
और जिस किताब की बात हो रही है वो है महान संगीत निर्माता रिक रूबिन की द क्रिएटिव एक्ट अ वे ऑफ बीइंग।
सही कहा। और ये किताब ना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को कलाकार मानते हैं,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने सोचने के तरीके में थोड़ी ज्यादा मौलिकता लाना चाहता है।
हाँ, और थोड़ी ज्यादा गहराई और शायद थोड़ा सुकून भी।
बिल्कुल। आजकल जिस तरह की भागदौड़ है ना, हर चीज पर तुरंत नतीजों का दबाव रहता है।
हाँ, बिल्कुल।
ऐसे में ये किताब एक ताजी हवा के झोंके जैसी है। ये हमें याद दिलाती है कि भाई, रचनात्मक होना कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि हमारा स्वभाव है।
हाँ, हमारी बुनियादी मानवीय क्षमता है, ये अंदर ही है।
और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करती, ये उन मुश्किलों से जूझने का रास्ता भी दिखाती है जिनसे हम सब गुजरते हैं।
सही बात है, कभी लगता है दिमाग बिल्कुल खाली है, कुछ सूझ नहीं रहा।
हाँ, वो क्रिएटिव ब्लॉक जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। या फिर खुद पर शक होने लगता है,
उफ, वो तो बहुत होता है।
या दुनिया क्या कहेगी इसका डर सताता है। ये किताब इन सब चीजों पर बात करती है।
हाँ, ये किताब रचनात्मकता को सिर्फ कुछ बनाने की क्रिया नहीं मानती
नहीं,
बल्कि जीने का एक तरीका, एक होने का ढंग मानती है। तो चलिए इस गहरे और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं रिक रूबिन के साथ।
जरूर। तो शुरुआत करते हैं खुद रिक रूबिन से। ये शख्स हैं कौन और इनकी बात में ऐसा क्या खास है भाई?
रिक रूबिन अमेरिका के एक दिग्गज, बल्कि कहना चाहिए पौराणिक संगीत निर्माता हैं।
लेजेंडरी, बिल्कुल।
पिछले 40 सालों में संगीत जगत पर उनका जबरदस्त प्रभाव रहा है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने कॉलेज के डॉर्म रूम से ही डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स की सह स्थापना की थी।
हाँ, ये तो कमाल ही है, मतलब कॉलेज में ही इतना बड़ा काम।
और उनकी रेंज देखिए, एक तरफ LL कूल जे और रन DMC जैसे हिप हॉप कलाकार,
बिल्कुल शुरुआती हिप हॉप।
दूसरी तरफ जॉनी कैश और टॉम पेटी जैसे कंट्री और रॉक लेजेंड्स,
हाँ,
फिर रेड हॉट चिली पेपर्स और स्लेयर जैसे बैंड्स, और यहाँ तक कि अडेल जैसी पॉप सुपरस्टार भी। ये तो मतलब
अविश्वसनीय है। यही तो उनकी खासियत है, वो खुद कोई वाद्य यंत्र बजाने या गीत लिखने के लिए नहीं जाने जाते।
अच्छा।
हाँ, उनकी असली प्रतिभा है गहराई से सुनने में और कलाकार के अंदर जो छिपा है ना उसे बाहर लाने में मदद करने में। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कलाकार अपने डर और हिचकिचाहट से आगे बढ़कर अपनी सबसे सच्ची कलात्मक आवाज तक पहुंच पाते हैं।
हाँ, मैंने सुना है उन्हें उनके मिनिमलिस्ट यानी न्यूनतम दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है।
बिल्कुल।
वो हर गैर जरूरी चीज को हटाकर गाने या परफॉर्मेंस की आत्मा तक पहुंचने में मदद करते हैं। जैसे आपने जॉनी कैश का जिक्र किया,
हाँ, उनके साथ काम करते हुए उन्होंने लगभग सिर्फ उनकी आवाज और गिटार को रखा।
ताकि गाने का दर्द और सच्चाई सीधी दिल तक पहुंचे।
बिल्कुल, यही है सार तक पहुंचना। कई कलाकार तो कहते हैं कि वो एक प्रोड्यूसर से ज्यादा एक क्रिएटिव मिडवाइफ यानी रचनात्मक दाई।
क्रिएटिव मिडवाइफ।
हाँ, या एक आध्यात्मिक गुरु या एक दार्शनिक सलाहकार की तरह हैं। सोचिए, उन्होंने दशकों तक दुनिया के सबसे क्रिएटिव दिमागों को करीब से देखा है।
उनके संघर्षों को, उनकी सफलताओं को।
हाँ, उनके सोचने के तरीकों को समझाए। ये किताब उन्हीं अनुभवों और अवलोकनों का निचोड़ है, सार है। वो हमें गिटार बजाना नहीं सिखा रहे हैं,
नहीं,
वो हमें जीना सिखा रहे हैं एक रचनात्मक प्राणी की तरह।
तो ये किताब असल में है क्या फिर? कोई म्यूजिक प्रोडक्शन गाइड तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब रचनात्मकता की प्रकृति पर एक दार्शनिक सोच है, एक मेडिटेशन जैसी।
अच्छा।
इसे छोटे छोटे ध्यानपूर्ण विचारों की एक श्रृंखला के रूप में लिखा गया है। ये कोई 5 स्टेप्स टू सक्सेस वाली गाइड नहीं है।
नहीं, वो तो नहीं लगती।
ये एक आध्यात्मिक साथी जैसी है जो आपको अपने अंदर झांकने और अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है।
दिलचस्प। तो इसका केंद्रीय विचार क्या है? मुख्य बात क्या है इसमें?
सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार ये है, रचनात्मकता कुछ चुने हुए कलाकारों की बपौती नहीं है। ये हम सबके अंदर मौजूद है, ये मानव होने का एक जरूरी हिस्सा है, ये कुछ करने से ज्यादा होने की एक अवस्था है।
और आपने पहले स्रोत वाली बात बताई थी, वो क्या है? वो थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। रूबिन कहते हैं कि ये किताब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है कि महान विचार हमारे दिमाग की उपज हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं है?
वो कहते हैं नहीं, विचार तो ब्रह्मांड में एक सार्वभौमिक चेतना या सोर्स में पहले से मौजूद हैं, तैर रहे हैं। हमारा काम सृजन करना नहीं है।
तो क्या है?
हमारा काम है एक संवेदनशील एंटीना या माध्यम बनना जो उन विचारों को पकड़ सके। सोचिए, इससे ओरिजिनल या मौलिक होने का कितना दबाव लग जाता है।
हाँ, ये तो है।
हम रचयिता नहीं, बस रिसीवर हैं, ग्राहक हैं।
वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो ये किताब पाठक को एक तरह की अंदरूनी यात्रा पर ले जाती है, एक इनर जर्नी।
बिल्कुल, दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों के प्रति ज्यादा सचेत होना, विचारों के नाजुक संकेतों को पकड़ना सीखना, और फिर उस रचनात्मक चक्र को समझना, कैसे एक छोटा सा विचार बी जाता है, कैसे उसके साथ प्रयोग किया जाता है, कैसे उसे धीरे धीरे तराशा जाता है, शिल्प कैसे उसे पूरा किया जाता है, और फिर कैसे उसे दुनिया में जाने दिया जाता है।
और ये किसके लिए? क्या सिर्फ लेखक, पेंटर, संगीतकारी से समझ पाएंगे या?
नहीं नहीं, यही तो उसकी खूबसूरती है, ये हर किसी के लिए है,
सबके लिए।
हाँ, चाहे कोई पेशेवर कलाकार हो या कोई इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन या गृहिणी, हर कोई अपने जीवन और काम में ज्यादा मौलिकता, ज्यादा अर्थ और ज्यादा जुड़ाव लाने के लिए इससे प्रेरणा ले सकता है।
और इसकी बनावट भी अनोखी है, सुना है?
हाँ, 78 छोटे छोटे सूत्र जैसे अध्याय हैं जिन्हें रूबिन विचार के क्षेत्र एरियाज ऑफ थॉट कहते हैं। आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहला अध्याय पहले पढ़ना जरूरी है।
अच्छा, ये तो बढ़िया है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के मुख्य हिस्सों या विचारों को थोड़ा खोलते हैं। पहला हिस्सा नींव डालने जैसा है, ट्यूनिंग इन एंड परसेप्शन। यहाँ क्या बात होती है?
यहाँ वो बुनियादी मानसिकता स्थापित की जाती है कि भाई, रचनात्मकता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं। और यहीं पर स्रोत की अवधारणा को और खोला जाता है। विचार बाहर से आते हैं, ब्रह्मांड से। हमारा काम है अपने अंदर के शोर को शांत करके उन्हें सुनना और ग्रहण करना।
मतलब अहंकार को किनारे रखना।
बिल्कुल, कि मैं कितना महान रचयिता हूँ ये सोचने के बजाय मैं कितना अच्छा श्रोता बन सकता हूँ, इस पर ध्यान देना।
लेकिन ये सुनना या ग्रहण करना होता कैसे है? ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है।
रूबिन कहते हैं कि इसका सबसे जरूरी उपकरण है जागरूकता, अवेयरनेस, अपनी इंद्रियों को, अपनी परसेप्शन को तेज करना।
कैसे?
कैसे? प्रकृति में टहलते हुए पत्तियों के रंगों के बारीक फर्क पर ध्यान देना, या दो आवाजों के बीच की खामोशी को सुनना, या रोशनी और परछाई के बदलते खेल को देखना।
अच्छा, मतलब रोजमर्रा की चीजों में ध्यान देना।
हाँ, रोजमर्रा की साधारण चीजों में छिपे असाधारण सौंदर्य को पहचानना। और हम सिर्फ माध्यम नहीं हैं, हम फिल्टर भी हैं।
फिल्टर? कैसे?
हमारे अपने जीवन के अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, ये सब मिलकर उन विचारों को एक अनोखा रंग और रूप देते हैं जिन्हें हम पकड़ते हैं।
समझ गए, यानी ध्यान देना ही पहला कदम है। इसके बाद आता है बीज और प्रयोग, द सीड एंड एक्सपेरिमेंटेशन का चरण। यहाँ बीज से क्या मतलब है?
बीज यानी एक शुरुआती नाजुक सा विचार, ये अक्सर अधूरा, अस्पष्ट सा होता है। रूबिन कहते हैं कि इसे आते ही अच्छा या बुरा कहकर खारिज मत करो।
अच्छा,
बस उसे पकड़ो, उसे थोड़ी जगह दो, देखो वो क्या रूप लेता है।
ये वो दौर है जब आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी, अनुभव, प्रेरणाएं इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं।
हाँ।
अपने अवचेतन मन के कुएं को भरते हैं
और फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन।
हाँ, और ये प्रयोग खेल जैसा होना चाहिए, बिना किसी दबाव के, नतीजे की चिंता किए बिना चीजें ट्राई करना।
मतलब डरना नहीं?
बिल्कुल नहीं। अगर कोई आइडिया बुरा भी लगे तो भी उसे आजमा कर देखने में हर्ज नहीं, क्या पता उससे कुछ और निकल आए। बस अपनी सहज जिज्ञासा के पीछे चलते जाना।
यहाँ क्लिशे और नियमों वाली बात भी दिलचस्प लगी थी मुझे।
बिल्कुल, रूबिन कहते हैं कि कभी कभी किसी जानी पहचानी चीज यानी क्लिशे से शुरू करना भी ठीक है, वो एक शुरुआती जमीन दे देता है।
अच्छा।
हाँ, और कभी कभी खुद पर कुछ सीमाएं या बाधाएं लगाना, जैसे तय कर लेना कि मैं सिर्फ 3 रंगों से पेंटिंग बनाऊंगा या सिर्फ 100 शब्दों में कहानी लिखूंगा, ये असल में रचनात्मकता को जगा सकता है।
हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है।
ये हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करता है।
तो विचारों के बीज बोने और उनके साथ खेलने के बाद सवाल उठता है कि उन्हें असल शक्ल कैसे दी जाए। यहीं पर शिल्प यानी क्राफ्ट का काम आता है ना?
एकदम। ये वो चरण है जहां आपकी सहज प्रवृत्ति यानी इंट्यूशन और सचेत इरादा यानी इंटेंशन मिलते हैं। यहां कौशल, स्किल, तकनीक, टेक्निक और सोच समझकर लिए गए फैसले काम आते हैं। लेकिन रूबिन यहां भी सावधान करते हैं, सिर्फ बुद्धि या तर्क को हावी न होने दें।
अच्छा।
अवचेतन मन की आवाज और सचेत दिमाग के बीच एक संतुलन साधना जरूरी है,
और इसमें निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी का भी महत्व है
बहुत ज्यादा। रूबिन गति, मोमेंटम और अनुष्ठान, रिचुअल्स की बात करते हैं। रोजाना अभ्यास करना, रोज अपने काम के लिए उपस्थित होना, चाहे उस वक्त प्रेरणा महसूस हो रही हो या नहीं।
हाँ, वो रोज बैठना जरूरी है।
बिल्कुल। कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान जैसे रोज एक ही समय पर लिखना या काम शुरू करने से पहले एक खास तरह की चाय पीना, ये हमारे अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि अब रचनात्मक काम का समय है।
लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य भी तो चाहिए होता होगा, बेपेशेंस और कभी कभी शक भी घेर लेता होगा, वो सेल्फ डाउट।
हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है, महान काम अक्सर समय लेते हैं। ये जानना भी कला है कि कब जोर लगाना है और कब थोड़ा पीछे हटकर काम को सांस लेने देना है, यानी ब्रेक लेना है।
ब्रेक लेना भी जरूरी है।
बहुत जरूरी। ब्रेक के दौरान हमारा अवचेतन मन पर्दे के पीछे काम करता रहता है, और जहां तक शक की बात है, रूबिन कहते हैं कि आत्मसंदेह इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ, ये असफलता की निशानी नहीं है। हमारे अंदर आलोचकों की एक पूरी समिति बैठी हो सकती है जो हमें कहेगी ये बेकार है, तुमसे नहीं होगा।
हाँ हाँ, वो आवाजें तो आती हैं।
उन्हें स्वीकार करें, उनकी सुने, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने ना दे। संदेह के बावजूद अपना काम करते रहें।
एक जानना काफी राहत देता है, क्योंकि वो शक वाली आवाज तो अक्सर आती है। अच्छा, फिर आता है काम को पूरा करने का चरण, पूर्णता और बाधाएं, कंप्लीशन एंड ऑब्स्टिकल्स। ये अक्सर सबसे मुश्किल लगता है।
हाँ, क्योंकि यहाँ कोई साफ लकीर नहीं होती कि अब काम पूरा हो गया।
सही बात है।
रूबिन कहते हैं कि फिनिश लाइन कोई बाहरी मापदंड नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है, एक सहज ज्ञान, इंट्यूशन है कि हाँ अब ये तैयार है।
और वो परफेक्शनिज्म का क्या, जो हमेशा लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता है?
आह, परफेक्शनिज्म। रूबिन कहते हैं कि परफेक्शनिज्म असल में डर का ही एक रूप है, नाकामयाबी का डर, आलोचना का डर। हमारा लक्ष्य एक दोषरहित चीज बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बात को, अपने एहसास को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करना होना चाहिए।
ईमानदारी।
हाँ, एक आदर्श काम बनाना संभव नहीं है, पर एक ईमानदार अभिव्यक्ति संभव है, और अक्सर वो छोटी मोटी कमियां या अपूर्णताएं ही काम को ज्यादा मानवीय और ज्यादा रिलेटेबल बनाती हैं।
ये बहुत जरूरी बात है। और जैसे जैसे काम पूरा होने लगता है, वो अपनी मर्जी भी चलाने लगता है, ऐसा कुछ?
बिल्कुल। रूबिन कहते हैं कि आपको काम के साथ सहयोग, कोलैबोरेट करना होता है, सुनना होता है कि काम खुद क्या बनना चाह रहा है, बजाय इसके कि आप उसे अपनी शुरुआती सोच में ही जकड़े रखें।
अच्छा, मतलब काम को भी लीड करने देना है थोड़ा।
हाँ, ये भी एक तरह का समर्पण है। और अगर आप अटक जाएं यानी क्रिएटिव ब्लॉक महसूस करें, तो घबराए नहीं, ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है।
ये भी हिस्सा है।
हाँ, ये शायद संकेत है कि आपको अपना नजरिया बदलने की, या थोड़ा ब्रेक लेकर अपने अंदर के कुएं को फिर से भरने की, या बस आराम करने की जरूरत है।
और जब काम पूरा हो जाए, तब किताब का आखिरी हिस्सा है महान कार्य, द ग्रेट वर्क, साझा करना और रचनात्मक जीवन जीना।
यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद विवादास्पद बात रूबिन कहते हैं, दर्शक सबसे आखिर में आते हैं।
क्या?
दर्शक आखिर में।
हाँ,
आप वो कला बनाएं जो आप खुद दुनिया में देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर से आ रही है। अगर आप ये सोचकर बना रहे हैं कि लोग क्या पसंद करेंगे, तो आप ईमानदारी से समझौता कर रहे हैं।
लेकिन आजकल तो,
हाँ, आप सेवा व्यवसाय में हो सकते हैं, कला व्यवसाय में नहीं।
ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही होता है।
हाँ, लेकिन रूबिन का जोर अंदरूनी सच्चाई पर है। वो ये भी कहते हैं कि सफलता और विफलता बाहरी चीजें हैं।
बाहरी।
हाँ, व्यावसायिक कामयाबी मिले या आलोचना, उसे अपने काम के आंतरिक मूल्य पर या उसे बनाने के अनुभव पर हावी ना होने दें। असली इनाम तो उस बनाने की प्रक्रिया में ही मिल चुका है।
वाह।
इस नतीजे से एक तरह का अलगाव, डिटैचमेंट जरूरी है,
और फिर उसे जाने देना, लेट गो करना।
हाँ, एक बार आपने अपना काम दुनिया के साथ साझा कर दिया, तो वो सिर्फ आपका नहीं रहता। लोग उसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या करेंगे, उसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उसे बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के जाने दें। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं है। असली महान कार्य है जीवन भर एक रचनात्मक प्राणी के रूप में जीना।
जीने का तरीका।
हाँ, एक ऐसा होने का तरीका जहां जागरूकता, जिज्ञासा, प्रयोग और अभिव्यक्ति आपके जीवन का हर पल का हिस्सा बन जाएं।
वाव, ये तो सच में जीने का एक फलसफा है। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के कुछ सबसे अहम संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, कुछ मुख्य बातें?
मेरे लिए सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली संदेश है, एक रचनात्मकता एक सार्वभौमिक मानवीय अवस्था है। ये कोई खास प्रतिभा नहीं, बल्कि हम सबका नैसर्गिक गुण है।
हाँ, मतलब ये हमारे खाना पकाने में भी हो सकती है?
बिल्कुल, बच्चों को कहानी सुनाने में या ऑफिस की किसी मुश्किल समस्या का हल निकालने में भी झलक सकती है।
बिल्कुल सहमत। दूसरा जो मुझे बहुत सुकून देता है, टू, कलाकार सिर्फ एक माध्यम है, स्रोत नहीं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
इससे मैं रच रही हूँ वाला अहंकार कम होता है और ओरिजिनल होने का भारी दबाव हटता है। जोर सुनने, ग्रहण करने और ईमानदारी से उसे छानकर पेश करने पर है।
तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा करने लायक है, थ्री, जागरूकता, ध्यान देना ही सब कुछ है।
ध्यान देना?
हाँ, रचनात्मकता की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितनी गहराई और बारीकी से देखते, सुनते और महसूस करते हैं।
भारत में ध्यान और माइंडफुलनेस की बात आजकल इतनी हो रही है।
हाँ, ये उसी से जुड़ता है, बस पल में मौजूद रहना।
बिल्कुल।
हाँ, और चौथा, जो आज की परिणाम उन्मुख दुनिया में बहुत जरूरी है, फोर, प्रक्रिया उत्पाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, बनाने के सफर में जो सीखने को मिलता है, जो अनुभव होता है, वही असली इनाम है, न कि आखिर में मिलने वाली तालियां या आलोचना। ये सोच बहुत आजाद करने वाली है।
और पांचवा, अपूर्णता और अंतर्ज्ञान को गले लगाना,
इम्परफेक्शन को।
हाँ, हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग और परफेक्ट बनाने की कोशिश करना रचनात्मकता का गला घोंट सकता है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना और ईमानदारी को निखुटता से ऊपर रखना, यही कुंजी है।
ये शायद हमारी जुगाड़ वाली संस्कृति से भी थोड़ा मिलता जुलता है।
हाँ, कह सकते हैं, पर यहाँ जोर ईमानदारी पर ज्यादा है, जुगाड़ से ज्यादा।
ये किताब ऐसे विचारों से भरी है जो दिमाग में अटक जाते हैं। कुछ ऐसे कोट जैसे विचार साझा करते हैं जो खास तौर पर असरदार लगे।
जरूर, एक तो यही कि कलाकार एक पात्र है, कलाकार एक फिल्टर है, कलाकार एक एंटेना है। हम विचारों के स्रोत नहीं हैं, हमारा काम उनके प्रति जागरूक होना है।
ये बार बार याद दिलाता है कि हमें विनम्र और ग्रहणशील रहना है।
बिल्कुल, और वो वाला भी, दर्शक सबसे आखिर में आते हैं, काम पहले कलाकार के लिए होता है।
हाँ,
मैं नहीं,
ये अपनी आवाज के प्रति सच्चा रहने की हिम्मत देता है।
एक और जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, हम एक आदर्श काम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णता की अपनी धारणा को व्यक्त करना चाहते हैं। एक आदर्श काम संभव नहीं है, एक ईमानदार अभिव्यक्ति संभव है। ये परफेक्शनिज्म के जाल से निकलने में मदद करता है।
और आखिर में ये छोटी सी पर गहरी बात, उसे खोजें जिस पर आप ध्यान देते हैं लेकिन कोई और नहीं देखता।
हाँ, आपकी अनोखी नजर ही आपकी मौलिकता का स्रोत है। उन छोटी चीजों पर ध्यान दें जो सिर्फ आपको दिखती हैं।
ये सारे विचार हमें प्रेरित तो करते हैं, पर सवाल ये कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकल कैसे बने।
कलाकारों के लिए तो शायद ये सीधे तौर पर लागू होते हैं, जब अटके हुए महसूस करें तो चैनल बदलें, ब्रेक लें।
हाँ,
शक को दुश्मन नहीं साथी समझें। काम पूरा करते वक्त ईमानदारी को परफेक्ट बनाने की जिद पर तरजीह दें।
और जो लोग पारंपरिक रूप से क्रिएटिव फील्ड में नहीं हैं, उनके लिए, जैसे ऑफिस में काम करने वाले,
उनके लिए भी ये बहुत काम के हैं। ऑफिस में कोई नई समस्या सुलझानी है तो जानबूझकर कुछ सीमाएं तय करें।
जैसे
बजट कम कर दें या समय सीमा घटा दें और देखें कि कैसे नए आइडियाज आते हैं। अपनी टीम में ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग बिना डर के नए प्रयोग कर सकें।
हाँ, जहां अधूरे विचार भी साझा कर सकें, गलतियां करने की आजादी हो।
बिल्कुल, सेफ स्पेस जिसे कहते हैं।
और फैसले लेते समय सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों पर ही निर्भर न रहें, अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भी थोड़ा भरोसा करना सीखें।
हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है। डेटा भी देखें पर अंदर की आवाज भी सुने।
व्यक्तिगत जीवन में भी इसे उतार सकते हैं। सचेतनता का अभ्यास करें, चाय पीते हुए सिर्फ चाय पिएं, उसके स्वाद, उसकी खुशबू पर ध्यान दें।
हाँ, या ट्रैफिक में फंसे हों तो गुस्सा करने की बजाय आसपास की आवाजों को सुने, मतलब ध्यान देना बस।
अपने शौक, चाहे वो बागबानी हो, खाना बनाना हो या पेंटिंग, उसे सिर्फ नतीजे के लिए नहीं बल्कि करने के आनंद के लिए करें।
सही बात है, प्रोसेस को एंजॉय करें।
हाँ, या कोई निजी उलझन हो तो तुरंत समाधान पर कूदने की बजाय थोड़ी देर रुकें, जानकारी इकट्ठा करें, अलग अलग नजरियों से सोचें
और समाधान को धीरे धीरे खुद उभरने दें। जैसे रूबिन कहते हैं, विचारों को आने दें, जबरदस्ती ना करें।
इस पूरी बातचीत से जो एक बात मेरे मन में बैठ गई है वो ये कि ये किताब रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण करती है, डेमोक्रेटाइज करती है।
हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है।
ये उसे ऊंचे आसन से उतारकर हम सबके हाथ में थमा देती है। ये कहती है कि आप भी रचनात्मक हैं, बस आपको ध्यान देना सीखना है। और ये बहुत दबाव हटाने वाला, राहत देने वाला नजरिया है।
हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया प्रक्रिया पर जोर और नतीजों से अलगाव की बात। ये समझना कि बनाने के सफर का आनंद ही असली मकसद है, बाहरी मान्यता मिले ना मिले।
हाँ,
ये किताब वाकई एक गाइड से ज्यादा एक आध्यात्मिक दोस्त या मार्गदर्शक जैसी है।
बिल्कुल, जो सिर्फ बेहतर कला बनाने में नहीं बल्कि एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा जिंदा दिल जीने में मदद करती है।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।